आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। चौथे राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान का शुभारंभ आज। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का दूसरा चरण शुरू। संस्कार से ही जीवन में बदलाव आता है, कहा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने। और गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस प्रकाश पर्व आज मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर के गुरुद्वारे में हो रहे शबद कीर्तन। अब समाचार विस्तार से। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि महीने भर चलने वाले इस अभियान का आयोजन देश भर के 2500 शिविरों में किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य चेहरा पहचान तकनीक का उपयोग करके पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस अभियान के अंतर्गत सभी पेंशन भोगी, विशेषकर बुजुर्ग पेंशन भोगियों को अपनी सुविधा के अनुसार निर्बाध डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण महीने भर चलने वाले इस अभियान में तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2025 की शुरुआत की। इसके अंतर्गत फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कोलंबिया के 14 प्रतिभागी 6 नवम्बर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान देखेंगे। आयोग ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के 2 दिन के दौरे में प्रतिभागी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रेषण केंद्रों का दौरा करेंगे। उद्घाटन सत्र में प्रतिभागियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव संचालन का प्रदर्शन किया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने भी प्रतिभागियों से बातचीत की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन छत्तीसगढ़ के 2 दिन के दौरे पर आज शाम रायपुर पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति का पद संभालने के बाद यह राज्य का उनका पहला दौरा होगा। इस दौरान वे राज्य की 25वीं वर्षगांठ के प्रतीक रजत महोत्सव समारोह सहित नवा रायपुर और राजनंदगांव में कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रदेश में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण की कल शुरुआत हो गई। कल पहले दिन इंदौर जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवम वर्मा ने स्वयं मतदाताओं के घर पहुंचकर गणना प्रपत्र वितरित किए। कलेक्टर ने बताया कि जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया 4 दिसम्बर तक चलेगी। इसके लिए जिले में 2625 BLO नियुक्त किए गए हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 51 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण किया जाएगा। मतदाता सूचियों का व्यापक पुनरीक्षण 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगा। 9 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। अगले साल 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। शिवपुरी, जबलपुर, नर्मदापुरम सहित प्रदेश भर में BLO घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि संस्कार ही से ही जीवन में बदलाव आता है। हमारी सनातन संस्कृति अद्भुत है। भारत को सदैव विश्व गुरु के रूप में दुनिया देखती आई है। भारत में ही अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने की समस्त संभावनाएं निहित हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल जबलपुर में BAPS स्वामीनारायण संस्थान द्वारा आयोजित जीवन उत्कर्ष महोत्सव को संबोधित कर रहे थे।
ये जो सोए हुए व्यक्ति को जगाने का प्रयास स्वामीनारायण संप्रदाय कर रहा है, मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और ये देवालयों के प्रकार विविधता वाले हैं, तो परिवर्तन की भी आपने यात्रा यहाँ प्रारंभ कराई। मध्य प्रदेश की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे विद्यालयों में ये आने वाली सुगंधित बेल धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैलेगी। और स्कूल शिक्षा का भी ध्यान रखा तो उच्च शिक्षा का भी ध्यान रखा, इसलिए दोनों तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। आपने जीवन उत्कर्ष के माध्यम से हायर एजुकेशन का भी ध्यान रखा, स्कूल एजुकेशन का भी ध्यान रखा।
मुख्यमंत्री ने महोत्सव में बीएपीएस के दो पाठ्यक्रम चलो बने आदर्श और इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स आईपीडीएसी का शुभारंभ किया। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य स्कूली बच्चों और युवाओं को संस्कार और जीवन मूल्यों की शिक्षा देना है। महोत्सव में मंगलायन यूनिवर्सिटी और रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के कुलगुरु ने कोर्स से संबंधित एमओयू का आदान प्रदान किया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। 22 सितंबर को शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में जीएसटी की दरों में कटौती किए जाने के बाद खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में नई जीएसटी दरें नागरिकों के लिए मददगार साबित हो रही हैं।
नए जीएसटी सुधार केरल के किसानों, कारीगरों, तटीय समुदायों और छोटे उद्यमियों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। प्रमुख क्षेत्रों में जीएसटी में कटौती करके इन सुधारों ने उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों को किफायती बनाया है और व्यापारियों के मुनाफे को बढ़ाया है। केरल का काजू प्रसंस्करण उद्योग, जिसमें लगभग 3 लाख कर्मचारी कार्यरत है, इसमें अब 5% जीएसटी लग रहा है, जिससे प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यात इकाइयों की लागत में कमी आई है। इसी तरह वायनाड के आसपास के कॉफी क्षेत्र को भी बड़ा लाभ हुआ है, जिसमें इंस्टेंट कॉफी और उससे बनी चीजों पर कर की दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। मसाला क्षेत्र में मालाबार काली मिर्च पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे छोटे पहाड़ी कृषि उत्पादकों और प्रसंस्करण समूहों को लाभ हुआ है। इस बीच मत्स्य पालन और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे राज्य में उत्पादों की मूल्यों में कमी आई है। इसके अलावा आयुर्वेदिक दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर अब 5% कर लग रहा है, जिससे लागत पर 6 से 11% की बचत हो रही है। इन सुधारों ने राज्य के प्रमुख क्षेत्रों पर कर को बोझ को कम कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य केरल के ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों में समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। समर्थ रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।
सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती आज मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 556वें प्रकाश पर्व पर गुरु नानक देव जी के संदेश का स्मरण आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि गुरु नानक देव जी द्वारा संसार को मानवता का संदेश देते हुए सेवा के लिए समर्पित उनका जीवन अद्भुत रहा। उनकी शिक्षाएं समाज के लिए सदैव प्रासंगिक और पथ प्रदर्शक रहेंगी। इंदौर जिले में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके तहत जिले में प्राकृतिक खेती का रकबा बढ़ाया जाएगा और उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही किसानों को उनके उत्पाद की मार्केटिंग और ब्रांडिंग में भी मदद दी जाएगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि राज्य सरकार के निर्देश पर कंपनी अपने कार्यक्षेत्र के 16 जिलों में किसानों को कृषि फीडरों पर 10 घंटे बिजली आपूर्ति कर रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 9,92,000 से अधिक कृषि उपभोक्ता हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और गुरु नानक जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर नर्मदा नदी में मुख्य स्नान, दीपदान और शोभा यात्रा शामिल है। आगरमालवा जिले की ग्राम पंचायत पायली में काली सिंध, लखुंदर और भाटन नदी के त्रिवेणी संगम पर 6 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेला आज से शुरू हो गया है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। विदिशा जिले में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के समापन वर्ष जनजातीय गौरव के तहत आयोजित पाक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत आज लोकगीत एवं लोकनृत्य का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।